हरे कृष्णा। सब बोले, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बल्कि लाउडली उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका पुनः स्वागत है इस महान कृष्ण कथा यज्ञ में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का जो नित्य धाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, वो सदा सर्वदा के लिए है, भगवान को प्रिय है। और उसके साथ साथ हमने चर्चा शुरू की थी कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस भौतिक जगत में अपना प्राकट्य करते हैं, प्रकट होते हैं दारु ब्रह्म या अर्चा विग्रह के रूप में। तो उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो कल हमने सुना था कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी ब्रह्मा को ये बताती हैं कि सत्य युग में एक महान राजा होंगे, जो महान भगवत भक्त होंगे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न होगा। और लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम ऐसे महान शक्तिशाली राजर्षि इंद्रद्युम्न की सहायता करो और उनकी इस प्रकार से सहायता करो ताकि वो भगवान परम भगवान को अवतरित रखने का सामर्थ्य रखेंगे। तो ऐसे राजा इंद्रद्युम्न अपने पास भौतिक ऐश्वर्य संपदा होने के बावजूद भी भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागत थे और उनका अनुराग भगवान के भक्तों के प्रति था। भगवान के भक्त, भगवान से तो अनुराग है, लेकिन साथ साथ भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव गण हैं, साधु गण हैं, उनके प्रति भी राजा इंद्रद्युम्न का प्रीति और सेवा का भावना था। तो ऐसे राजा इंद्रद्युम्न ने अपने महल में उन साधु महात्माओं को जो अलग अलग स्थानों से तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आते थे, उनके निवास की व्यवस्था की थी। तो फिर हमने सुना कि ऐसे जो तीर्थ यात्री थे, शाम के समय में आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए एक तीर्थ यात्री ने कहा कि मैं ऐसे स्थान में गया हूं जहां भगवान साक्षात नील माधव के रूप में विद्यमान है, नील माधव के रूप में प्रकट स्वरूप है। तो इस प्रकार से जब राजा इंद्रद्युम्न ने सुना था और दूसरे दिन उस यात्री को ढूंढ रहे थे, तो यात्री चला गया था। और दूसरे पुराणों में वर्णन आता है कि राजा इंद्रद्युम्न अपने दरबार में सभा में बैठे थे, कई सारे मंत्रियों के संग में, कवियों के संग में, संतों के संग में। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ अवेलेबल है इस समय, जहां मैं जाकर उनको अपने साक्षात नेत्रों से उनको देख सकता हूँ। तो उस समय एक तीर्थयात्री साधु खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने देखा है उनको, ऐसे भगवान विद्यमान है नील माधव के रूप में। और इस प्रकार से उनको बता रहे थे और ये उनसे सुनकर राजा इंद्रद्युम्न का जो लालसा है भगवान का दर्शन करने की, वो और अधिक बढ़ गई। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी सभा में अपने पुरोहित और सब मंत्रियों को कहा कि सब लोग सर्च करो, ढूंढो उन भगवान को, मैं देखना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनको अपना प्रिय बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे राजा इंद्रद्युम्न के जो अलग अलग सहयोगी थे, मंत्री थे, वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और जो प्रमुख मंत्री जो पुरोहित है, उनके जो भाई थे विद्यापति, वो भी भगवान नील माधव की खोज में निकल पड़ते हैं। और ये जो विद्यापति हैं, जाते जाते भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे और इसी भावना में मग्न थे कि अभी मैं उन परम भगवान को देखने वाला हूँ, जल्दी उनको देखने वाला हूँ जिनका दर्शन करने मात्र से या जिनके मुख को देखने मात्र से सारे पापों का क्षय हो जाता है तुरंत ही। तो इस प्रकार से विद्यापति अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते करते चले गए हैं, दक्षिण सागर के तट पर, और वहां उन्होंने देखा कि एक शबर बस्ती थी, और उस बस्ती में जो लोग हैं शबर जाति के जो लोग हैं वो आपस में चर्चा कर रहे थे, भगवान की लीला कथा का वर्णन कर रहे थे। और जब रात्र हुई तो विद्यापति हैं उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें मुझे निवास के लिए स्थान प्रदान कीजिए। तो विद्यापति को वहाँ के जो निवासी है उन्होंने कहा कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है, विश्ववसु के यहाँ आप जाकर निवास कीजिए, वो आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पहुंचे तो विश्ववसु तो घर में नहीं थे, लेकिन उनकी जो कन्या है, पुत्री है ललिता, वो घर में थी। उन्होंने उनको रिसीव किया विद्यापति को, और थोड़े ही समय में ये जो विश्ववसु हैं वो आकर पहुंचते हैं घर में। तो घर का जो पूरा वातावरण है सुगंध से महक उठता है, चारों ओर एक विशेष प्रकार की सुगंधें फैलने लगती हैं। और जब इनको विश्ववसु उनका स्वागत करते हैं अतिथि के रूप में, विद्यापति का जो ब्राह्मण है और ये शबर जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनको अपने घर में रहने का स्थान प्रदान करते हैं। तो जब उनको ये स्थान प्रदान किया तो उस समय विद्यापति ने कई दिनों तक वहाँ निवास किया, और थोड़े ही दिन कुछ समय में उनकी जो पुत्री थी, कन्या थी, उनसे विवाह किया ललिता से। तो अभी ऑफिशियली उनकी वो पत्नी बन चुकी थी। तो लेकिन ये तो एक मिशन को लेकर वो चल रहे थे। मिशन क्या था उनका? मिशन ये था कि नील माधव को ढूंढ के निकालना, भगवान की खोज करना। और वास्तव में हमारा जीवन इसी के लिए मिला है। हम भी अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रत्न को खो चुके हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहु ना बजिया मैनू, कि मैंने ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की सेवा नहीं की है। अधने जतने करी धन त्यागिनु, मैंने जो धन नहीं है उसको धन समझकर पूरा जीवन उसको इकट्ठा करने में बिताया, लेकिन जो असली धन है, असली धन क्या है? शास्त्र कहते हैं धन मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण। असली धन है भगवान नित्यानंद प्रभु या राधा कृष्ण के श्री चरण, उसको तो मैंने त्याग दिया। और भ्रम के कारण जो धन नहीं है उस चीज को धन समझकर अपना मूल्यवान जीवन खो दिया, हम गवा चुका हूं। तो ऐसे विद्यापति जब उनके घर में निवास करने लगे तो उन्होंने उनके अपनी पत्नी से पूछा, ओ ललिता आप बताओ, तुम्हारे पिताजी रोज शाम को चले जाते हैं, दिन में चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? और जब वो आते हैं तो उनके शरीर से विशेष प्रकार का सुगंध निकलने लगता है, पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठता है, आप मुझे बताओ। तो ललिता ने, तो उनके फादर ने, उनके पिताजी ने उनको मना किया था, हाँ, क्योंकि यह रहस्य नहीं बताना है, क्योंकि विश्ववसु को पहले से ही ये ज्ञात था उनके अलावा कोई व्यक्ति नील माधव को देखेगा तो भगवान उसी क्षण अप्रकट होने वाले थे उस स्थान से। क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं कालांतर में ऐश्वर्यशाली सेवा स्वीकार करने वाला हूं, और इनकी सेवा तो क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अभी भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम से रहने वाले नहीं थे नील माधव, वो तो चाह रहे थे कि एक ऐसा मेरा भक्त आएगा राजा इंद्रद्युम्न जो मेरे सारे ऐश्वर्यमयी सेवा मुझे प्रदान करेगा। तो फिर विश्ववसु की जो पुत्री है ललिता, विद्यापति ने कहा कि ये उचित नहीं है, पत्नी को अपने पति से कुछ छुपा के नहीं रखना चाहिए, बोल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बोल दिया कि मेरे जो पिताजी हैं इस प्रकार से जाते हैं, उन्होंने कहा आप अपने पिताजी को बोलो कि वो मुझे भी अपने साथ लेके जाए। अभी और एक समस्या ललिता के लिए उन्होंने खड़ी कर दी। फिर ललिता ने कहा अपने पिता को, ललिता ने पिताजी को कहा कि आप मेरे जो पति हैं विद्यापति, हाँ विद्यापति हैं, तो विद्यापति है, उनको आप लेके जाओ उस नील माधव का दर्शन करने के लिए। तो विश्वासु बहुत गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, लेकिन ललिता रोने लगी, है ना। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों के पास एक विशेष आश्र है, और वो आश्र क्या है? आंसू, है कि नहीं। उन्होंने कहा आप यदि मेरे पति को नहीं लेके जाएंगे अपने साथ, रोते हुए ललिता ने कहा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। कैकेयी ने भी ऐसे कहा, लेकिन भरत को राजा नहीं बनाओगे ए दशरथ, और रो रही थी कोपग्रह में। इस प्रकार से पिता ने समझ लिया और उन्होंने कहा मैं उनको ले जाऊंगा, लेकिन एक काली पट्टी बांध के उनको ले जाऊंगा अपने साथ आंखों में। तो विश्ववसु ने उनको काली पट्टी बांध दी आंखों में, और ललिता बहुत चतुर पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, तिल के जो सीड्स हैं, बीज हैं, तिल, वो उनके जेब में डाल दिए, कुर्ते के जेब में। और वो जैसे उनको ले जाया गया, तो जाते जाते ये जो विद्यापति महाशय हैं, जाते जाते विश्वासु के साथ, अभी वो पूरे आंखें बंद थी, बैलगाड़ी से वो जा रहे थे जंगल में, नीलगिरी नील पर्वत के ऊपर, जहाँ 2 माइल का बड़ा सा वट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान नील माधव के रूप में विद्यमान थे, लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज विग्रह। तो बच्चों को प्लीज बाहर ले जाइए। तो नील माधव के दर्शन की जो लालसा है विद्यापति के अंदर बहुत तीव्र थी, और जाते जाते बारिश का समय था, आने वाला था बारिश, शुरुआती होने वाला था। तो इन्होंने वो तिल को डालते हुए पहुंच गए वहां, और वहां जाकर विश्ववसु ने उनकी आंखों की पट्टी खोली, और जैसे उनकी आंखों को खोला तो उसी समय उन्होंने उस दिव्य वातावरण को देखा कि भगवान नील वर्ण के हैं माधव, और जिनके साथ, और चतुर्भुज विग्रह थे, और जिनके साथ लक्ष्मी देवी विराजमान थी। तो विश्ववसु ने जैसे देखा, विद्यापति ने जैसे देखा, वो बहुत अधिक आनंद विभोर हो गए, भगवान की स्तुतियां करने लगे, उनको प्रणाम आदि करने लगे। और विश्ववसु ने कहा आप यहाँ ही रुको, मैं भगवान की सेवा के लिए थोड़े से फल, कुछ जल और कुछ पत्ते आदि इकट्ठा करता हूँ, आप यहाँ ही रुको। तो ये जो विद्यापति वह भगवान के सामने खड़ा ही था, तो उन्होंने साइड में देखा एक जलाशय है रोहिणी कुंड, और उस कुंड के ऊपर एक कौवा उस पेड़ के ऊपर बैठा था, वो गलती से गिर गया। जैसे गिर गया नीचे और रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श किया, उसी क्षण उस कौवे ने चतुर्भुज रूप धारण किया, और विद्यापति को लगा कि कितना सरल है वैकुंठ धाम जाना, पानी का स्पर्श करो तुरंत द्विभुज नहीं क्या हो जाओगे आप, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। तो फिर इन्होंने सोचा कि ये भूल गए मैं कौन से मिशन के लिए आया था, क्या मेरा प्रमुख कार्य था। तो ये भी चढ़ गए दौड़ते हुए पेड़ के ऊपर, और कूद लगाने वाले थे नीचे जल में, तो आकाशवाणी ने कहा नहीं तुम एक विशेष सेवा के लिए आए हो राजा इंद्रदुम्न की। तो फिर विद्यापति तुरंत वापस आता है नील माधव को देखने के लिए, और उसी समय विश्ववसु आते हैं। अभी विद्यापति ने जैसे भगवान को देखा था, उसके थोड़े ही समय में बहुत घनघोर वर्षा, तूफान, आंधी, ये सब उठने लगता है। और फिर भगवान नील माधव विश्ववसु के और विद्यापति के सामने ही अप्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही अप्रकट हो जाते हैं उसी क्षण विश्ववसु बहुत अधिक दुख महसूस करते हैं, और विश्ववसु इनको डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, पिटाई करने लगते हैं कि तुम ही कारण हो जिनके कारण मैं अपने जो प्राणनाथ है नील माधव है उनको खो चुका हूं। तो ऐसे विद्यापति को पकड़ के लाते हैं वापस घर में, और बहुत दुखी होकर देवतागण कहते हैं कि हे विश्ववसु, अभी वो समय आ गया है कि भगवान अपने मूल रूप में प्रकट होने वाले हैं और प्रकट होकर इंद्रद्युम्न महाराज से सेवा स्वीकार करने वाले हैं। तो फिर जैसे विद्यापति यहां आए वापस, विद्यापति जैसे ही विश्ववसु के घर में थे तो उन्होंने कहा विनम्रता के साथ, मैं तो एक विशेष सेवा के लिए यहां आया था और मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है। मैं अभी राजा इंद्रद्युम्न के पास जा रहा हूं और इंद्रद्युम्न के पास जाकर उनको बुलाऊंगा ताकि वो नील माधव की सेवा कर सके। कई अलग पुराणों में वर्णन आता है कि विद्यापति चले गए फिर भी नील माधव वहां ही थे, आप प्रकट नहीं हुए थे। तो लेकिन जब विद्यापति अवंतीपुर उज्जैन गए और राजा इंद्रद्युम्न को बताया, राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि सारे बाकी दूत वापस आ गए थे लेकिन एक विद्यापति 6 महीने हो गए हैं वापस नहीं आए। 3 महीने में सारे बाकी सारे जो दूत हैं वो वापस आए। विद्यापति वापस गए राजा के पास तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गार्डन और कई सारे जो महाप्रसाद हैं अलग अलग व्यंजन वो लेके गए थे और राजा इंद्रद्युम्न ने जैसे उनको देखा दौड़ते हुए राजा इंद्रद्युम्न महल से बाहर आए, विद्यापति का आलिंगन किया। विद्यापति ने कहा यही वो माला है जिनको साक्षात नील माधव ने धारण किया था और यही नाना प्रकार के व्यंजन है प्रसाद है जो देवता गण हर रोज नील माधव की सेवा के लिए स्वर्ग से लेकर आते हैं, उन्हीं व्यंजनों को उन्हीं प्रसाद को मैं आपके लिए लाया हूं। तो अश्रु पात करते हुए इंद्रद्युम्न राजा भाव विभोर हो जाते हैं और उन वस्तुओं को स्वीकारते हैं और तुरंत आशीष देते हैं कि कल ही हम निकल पड़ेंगे नील माधव का दर्शन करने के लिए। केवल राजा इंद्रद्युम्न ही नहीं निकला बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी पत्नी ही नहीं सारे मंत्री, सारा राज्य खाली हो गया, हर कोई राजा इंद्रद्युम्न के पीछे निकल रहा था नील माधव की सेवा के लिए। तो फिर जब सुबह का समय हुआ तो सारे ये जो पूरी प्रजा और राजा इंद्रद्युम्न हाथी रथ आदि को लेकर सारे धन सामग्री को लेकर निकल पड़े, उसी समय नारद मुनि आके पहुंचते हैं और नारद मुनि का स्वागत करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, नारद मुनि से बहुत भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अलग अलग भक्ति के जो लक्षण है उनको समझते हैं और फिर राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि को अपने साथ लेते हुए, पूरी प्रजा गुंडीचा महारानी को साथ लेते हुए, विद्यापति को लेते हुए ओडिशा पहुंचते हैं। जैसे वो ओडिशा पहुंचे महानदी के किनारे तो ओडिशा के राजा उनके पास आते हैं एक दुखद घटना को लेकर। क्या वो दुखद घटना थी? राजा इंद्रद्युम्न के पास आकर वो कहते हैं कि अभी बहुत ही घनघोर तूफान आदि हुआ था और उससे हमें पता चला है कि भगवान नील माधव यहाँ प्रकट नहीं है, नील माधव अब प्रकट हुए हैं। तो वो ये सुनकर ही राजा इंद्रद्युम्न मूर्छित हो जाते हैं, फिर नारद जी उनको किसी प्रकार से उठाते हैं और फिर राजा इंद्रद्युम्न फिर भगवान उनको स्वप्नादेश देकर कहते हैं कि आप क्या करो, ब्रह्मा जी की सहायता लेकर मेरे नील पर्वत या नीलाचल में प्रवेश करो और वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो राजा इंद्रद्युम्न फिर आगे उस नीलाचल धाम में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे उन्होंने प्रवेश किया और भगवान ने कहा था कि आप क्या करो, 1000 अश्वमेध यज्ञ करो जो आज आप जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जहां गुंडीचा मंदिर है उस स्थान में उन्होंने महावेदी बनाई थी, महावेदी मीन्स जहां उन्होंने ये सारे 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उन अश्वमेध यज्ञ में इंद्र चंद्र वरुण सारे देवतागण अलग अलग प्रकार की सेवाओं को करने के लिए वहां उतर गए थे राजा इंद्रद्युम्न की सहायता हेतु। और भगवान जगन्नाथ तो प्रकट नहीं हुए हैं उस यज्ञ के बाद, लेकिन उस यज्ञ वेदी से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं। उनको यज्ञ नरसिंह कहा जाता है, गुंडीचा मंदिर के पास एक विग्रह है गोग्रह नरसिम्हा भी उनको कहते हैं, अब जगन्नाथपुरी जाते हो तो उनका दिव्य दर्शन कर सकते हो। तो ऐसे नरसिम्हादेव प्रकट हुए हैं, हाँ, क्योंकि वो रक्षा प्रदान करते हैं अपने भगवत भक्तों को। फिर उनकी पूजा अर्चना की और फिर भगवान ने कहा कि आप, हाँ, मेरे लिए मंदिर बनाओ और ब्रह्मा जी की सहायता लो, और जिसके द्वारा तुम क्या करो, मैं प्रकट हो जाऊंगा, फिर मेरा स्थापना करो और सेवा पूजा तुम शुरू कर सकते हो। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया, बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया, और फिर उन्होंने विग्रह की स्थापना करने हेतु या अगला जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू करने के लिए ब्रह्मा के पास गए नारद के साथ, केवल इनविटेशन देने के लिए गए थे। और वहां गए, कुछ ही क्षण मिले ब्रह्मा जी को और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, चलकर क्या करना है, वहां भगवान की स्थापना करनी है अर्चा विग्रहों की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो तो कई पीढ़ियां चली गई, जो तुमने मंदिर बनाया था वो भी बालू के नीचे चला गया, तुमसे तुम्हारा कोई वंशजादी नहीं बचा है। तो एक दिन उसके बाद ओडिशा के जो राजा थे गल माधव, वो अपने घोड़े पर बैठते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे, घोड़े को फास्ट चलाते हुए। तो जाते जाते उनके घोड़े का पांव किसी चीज में अटक जाता और घोड़ा गिर जाता है। तो वो देखता है कि वो चीज क्या है, उस मंदिर का कलश था। इतना अधिक समंदर के रेत के कारण जो इतना विशाल मंदिर, सबसे विशाल मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए बनाया था विग्रह स्थापित होने से पहले। अभी ब्रह्मा को लाने गए थे, कई पीढ़ियां कई साल बीत गए थे, हजारों साल। तो फिर वो गल माधव ने, उस राजा गल माधव ने उस मंदिर को निकाला बाहर बालू से, और वहां वो विग्रहों की स्थापना करने लगे। और उन्होंने कहा, ये तो मंदिर मेरा, इस मंदिर पर अधिकार है, ये मेरे स्वामित्व में है। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न वापस आए, लेकिन भाग्यवश कुछ लोग जीवित थे, विद्यापति जीवित था, विश्ववसु ललिता थी, और कौन थे, और उनकी पत्नी गुंडीचा। तो फिर इन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न ने, ये मेरा मंदिर है। तो उस समय एक काक भुशंडी, एक विशेष काक मीन्स कौवा है, बहुत लंबी आयु है उनकी, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं ये जो मंदिर है राजा इंद्रद्युम्न का है। और फिर वो गल माधव जो राजा थे, प्रेजेंट राजा, उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ये चीजें प्रदान की, वो मंदिर दे दिया। और फिर भगवान की कृपा से वो सोचने लगे कि मुझे भगवान के विग्रहों की स्थापना करनी है। तो बहुत दुखी थे वो कि किस प्रकार के विग्रह होंगे, कौन से विग्रहों की मैं पूजा या उपासना या अर्चना करूंगा। तो भगवान के विरह में राजा इंद्रद्युम्न बहुत अधिक दुखी थे, उपवास कर रहे थे। उसी समय भगवान स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, मैं जल्द ही प्रकट होने वाला हूं, लेकिन कैसे, एक दारु ब्रह्म के रूप में। दारु का मतलब है लकड़, उड़। तो उन्होंने कहा कि जो चक्र तीर्थ है समंदर के किनारे, वहां भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि मैं बहुत बड़े लकड़ के रूप में आऊंगा, बड़ा सा जो लॉग है, उड़ का लॉग बड़ा सा, उसके रूप में आऊंगा, और उस लकड़ी के ऊपर शंकर चक्र गदा पद्म के निशान होंगे, और तुम क्या करो, उसको ले लो और उसके द्वारा मेरे विग्रहों को कार करो, बनाओ और उनकी स्थापना करो। तो जब समंदर में ये बहुत बड़ा लकड़ तैरते हुए एक किनारे में आया जहां उन्होंने ये यज्ञ आदि किए थे, तो वहां से वो उठाने का प्रयास किया, उन्होंने हाथियों को लगाया, अपने सैनिकों को लगाया, लेकिन फिर भी वो लकड़ वहां से हिल नहीं रहा था। फिर भगवान ने कहा, असंभव है, इसको तो केवल मेरे दो भक्त लेके जा सकते हैं, एक है विश्ववसु जिनका नाम क्या है, दयितापति, और दूसरे हैं ये जो विद्यापति हैं, ललिता के जो ब्राह्मण पति हैं। तो इन दोनों को राजा बुलाता है, अर्जुन के द्वारा राजा के जो महल का एक कमरा है उसमें उस बड़े से लकड़ी को ले जाते हैं और वहां रखते हैं, तो अलग अलग जो कारपेंटर्स हैं, लोग हैं, शिल्पी हैं, उनको वो लगाते हैं सेवाओं में। तो कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं था उससे विग्रह बनाने में। शास्त्र कहते कि अलग अलग शिल्पियों ने प्रयास किया उससे विग्रह बनाने का, लेकिन उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, बस उनके जो हथियार थे, वो टूटने लगते थे। फाइनली एक बूढ़ा सा एक शिल्पी आया, महाराणा जिसको कहा गया है, तो वो आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे ये सेवा प्रदान करो, मैं भगवान के विग्रहों को बनाऊंगा, लेकिन आप क्या करो, मुझे 15 दिन के लिए उस रूम में बंद रखो, ना खोलना है, उस रूम को खोलना नहीं है, मैं अंदर अपना सेवा अपना कार्य करता रहूंगा। तो उस समय राजा एग्री हुआ और इंद्रद्युम्न ने कहा कि आप ये सेवा कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो जो शिल्पी हैं, उन्होंने अपनी सेवा शुरू की। 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, अंदर से शीजर का आवाज आ रहा था, खट 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 खट, तो सब लोग सुनते थे। हाँ, सबके जो उत्साह है वो बढ़ गया था कि हाँ, अभी जल्दी हमें भगवान के विशेष विग्रहों का दर्शन होने वाला है। तो फिर जब 10 दिन हुए हैं या 8 दिन हुए हैं, उस समय आवाज आना बंद हो गई, तो राजा की जो पत्नी है गुंडीचा महारानी, उन्होंने इंद्रद्युम्न को कहा कि वो तो बूढ़ा सा शिल्पी था, इतने दिन के लिए हमने अंदर बंद करके रखा है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, वो जरूर उसने शरीर त्यागा होगा, मर गया होगा, दरवाजा खोली है, क्या करिए, दरवाजा खोलिए। लेकिन इंद्रद्युम्न कह रहे थे नहीं, नहीं करेंगे। लेकिन फिर राजा इंद्रद्युम्न अपने पत्नी के आदेशानुसार उस दरवाजे को खोलते हैं उस रूम का, और देखते क्या है कि अंदर वो तीन विग्रहों को देखते हैं, और जो तीन विग्रह हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बने हुए नहीं थे, आधे आधे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि मैंने घनघोर महान अपराध किया है, महान पाप किया है, कि भगवान के विग्रह पूर्ण होने से पहले ही उस जो शिल्पी है उसके आदेशों का मैंने पालन नहीं किया, और इस दरवाजे को खोला तो भगवान के विग्रह पूर्ण नहीं हुए हैं। वो अपने आप को बहुत घृणित मान रहे थे और फिर वो दुखी हो गए, रोने लगे, चिंता से व्याकुल होने लगे। तो उसी समय नारद आए और कैसे विग्रह थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जिनके ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है, ना ठीक से नाक है कि नहीं, कुछ भी ठीक से नहीं था। तो फिर इन्होंने लगा, इंद्रद्युम्न बहुत अपने आप को, उन्होंने जल पान करना, अन्न आदि सब त्याग दिया, उन्होंने कहा मैं महान अपराधी व्यक्ति हूं, मुझे तो अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। तो उस समय नारद मुनि आए और नारद ने कहा कि नहीं नहीं, यही वो विग्रह है, यही है वो परम भगवान जगन्नाथ देव, अपनी जो भगिनी है सुभद्रा देवी और अपने जो बड़े भाई हैं बलराम के साथ, इसी रूप को मैंने देखा है। किसने कहा, नारद ने। और वास्तव में नारद के अलावा इस रूप को इस जगत में किसी और ने देखा नहीं था। जब नारद ने देखा था तो नारद कूद कूद कर हाथ ऊपर कर करके बोल रहे थे, मैंने देखा, मैंने देखा। तो भगवान कृष्ण कहते हाँ समझ गए, तुम अकेले नहीं देखा है द्वारका में। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि बताओ बताओ, आपने कहाँ देखा, कैसे वो प्रकट हुए, कैसे ऐसा रूप कैसे बना उनका, जिनके ना हाथ है, ना पांव है, ना नाक है, ना कान है। फिर नारद ने कहा आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो इंद्रद्युम्न महाराज को यह वृत्तांत वो सुनाने लगते हैं। और जब भगवान इस रूप में प्रकट हो गए थे वहां, तो भगवान को राजा इंद्रद्युम्न प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा महारानी। तो जब भगवान ने देखा कि राजा इंद्रद्युम्न का मुझसे बहुत अधिक प्रीति है, प्रेम है, जगन्नाथ जी ने देखा, तो इन्होंने कहा कि हे राजा, तुम मुझसे मांगो क्या चाहते हो, क्या क्या वर, मैं वर देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हूं, कुछ मांगो मुझसे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने क्या मांगा होगा, राजा इंद्रद्युम्न ने तीन चीजें मांगी भगवान से, कहा हे कृष्ण, हे जगन्नाथ देव, आप देना चाहते हो और आप बहुत फोर्स कर रहे हो, तो मुझे आप तीन चीजें प्रदान करो। तो वो तीन चीजें क्या हैं? तो उन्होंने सबसे पहले मांगा कि मुझे कभी भी संतान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई मांग सकता है? क्योंकि विवाह करने का उद्देश्य क्या है, संतान प्राप्ति, अपने वंश को आगे बढ़ाना। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या में पत्नी केवल किसके लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए। और फिर इन्होंने ये मांगा तो भगवान ने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आपका ऐश्वर्य है, इतना बड़ा आपका मंदिर है, इतनी बड़ी सेवा है, यदि मेरे पुत्र आदि होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको अपनी संपत्ति मानेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे, उस ऐश्वर्य आदि का भोग करेंगे और आपकी सेवा सुव्यवस्थित रूप से नहीं होगी, इसलिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, ना पुत्र चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ देव, आपसे मैं यही वर की अपेक्षा करता हूं कि आप सदा सर्वदा अपना जो दर्शन है वह हमेशा के लिए खुला रखिए, आपका जो मंदिर है वह हमेशा के लिए खुला रहना चाहिए, मैं भी 2-3 घंटे के लिए बंद हो, तो इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न के इस वचन के लिए भगवान का मंदिर, आज भी भगवान रात को 1-2 बजे सोते हैं, 2-3 बजे सुबह उठ जाते हैं, 5:30-6 के बीच में फिर से दर्शन देने के लिए बैठे हैं। तो अपने भक्त के लिए भगवान जगन्नाथ इस प्रकार की कृपा सारे जीवों के प्रति देते हैं, क्योंकि दर्शन देने मात्र से ही जगन्नाथ सारे जीवों को इस भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं। तो तीसरी चीज उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे ये वर दो कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए, सदैव वो गीली रहनी चाहिए। आपको उंगलियां नजर आ रही है जगन्नाथ की, नहीं आ रही है कि नहीं, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को आ रही थी। हाँ, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जो भगवान के भक्त है भगवान को अपने हृदय में सदैव देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं मूल रूप में, यम श्याम सुंदरम अचित्य गुण स्वरूपम। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये चीज मांगे कि आपकी उंगलियां कभी सूखनी नहीं चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि आप ग्रहण करेंगे तभी तो आपके भक्त ग्रहण कर पाएंगे, नहीं तो बेचारे उपवास करके भक्ति को भी भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान जो जगन्नाथ है वो बहुत दयालु है, अलग अलग जो धाम है वहां अलग अलग भगवत अवतारों की, भगवत या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तब आप उस धाम के जो धामी हैं, भगवान हैं, उनकी कृपा को अनुकूल करते हो। तो जगन्नाथपुरी में भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो बहुत सरल है, क्या करना, प्रसाद ग्रहण करना, बस जाए जगन्नाथपुरी और अधिक से अधिक प्रसाद ग्रहण करे, कहां तक, कंठ भरने तक। इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ भार सारा जग पसारे हाथ, जगन्नाथ का जो भात है इतना पावरफुल है कि सारे जग अपना हाथ लेकर ऐसा घूमते रहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ अपने प्रसाद के रूप में सारे जीवों पर कृपा करते हैं, और रियली किसी को जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करना है उस व्यक्ति को जगन्नाथपुरी जाकर उनके महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनका महाप्रसाद इतना शक्तिशाली है। शास्त्र कहते हैं प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्यम्, जैसे प्राप्त हो जाए इंतजार नहीं करना चाहिए, तीन चीजों को शास्त्र कहते हैं डिले नहीं करना चाहिए, रोक के नहीं रखना चाहिए, इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये क्या है, गुरु, दूसरे कौन है, वैष्णव, तीसरे कौन है, प्रसाद। तीन चीजों को डिले नहीं करवाओ, तुरंत उनके सेवा में लग जाओ। सेवन वैष्णव का, गुरु का और कृष्ण प्रसाद का। तो फिर बाकी धामों में यदि आप रामेश्वर जाते हो तो वहां भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो वहां जाकर केवल क्या करना चाहिए, स्नान। क्योंकि भगवान चार धामों में चार प्रकार के कार्य करते हैं। भगवान बद्रीनाथ में सोते हैं और स्नान करते हैं, भगवान रामेश्वरम में और आपने आपको ड्रेसिंग करते हैं, सजाते हैं, वेशभूषा को धारण करते हैं, राज वस्त्र को पहनते हैं द्वारका में, इसलिए द्वारका देश कहते ना, राज है, किंग है। और भगवान भोग कहां ग्रहण करते हैं तो वो कौन सा स्थान है, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी धाम के। तो जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रद्युम्न के आदेशों का पालन करने के लिए कृष्ण 8 बार 56 प्रकार के व्यंजन को ग्रहण करते हैं। हम तो कोई फेस्टिवल होता है तो बेचारे भगवान सकोरे में देते हैं, है कि नहीं, भगवान आप संतुष्ट हो जाओ, वहां सकोरे नहीं, पूरे बड़े बड़े सीधा चूल्हे के ऊपर जो मटके रखे हैं वो सीधा भगवान के सामने रखे जाते हैं। तो वहां 700 से अधिक चूल्हे हैं, 5000 लोग सेवा में लगे हुए हैं भगवान जगन्नाथ के। अनलिमिटेड मात्रा में वहां भगवान जगन्नाथ भोजन भोग को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो असली क्या है, भोक्ता है, भोक्ता राम, भोक्ता आराम। तो असली भोक्ता राम है जगन्नाथ जी, भोक्ता राम, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति। तो इस सिद्धांत को हम समझते हैं तो वास्तव में शांति का अनुभव कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जैसे ही ये चीज कही, भगवान ने कहा जो विद्यापति की पत्नी ललिता से जो वंशज आगे बढ़ेंगे वो मेरी डेटी वर्षिप पूजा आदि की सेवा करेंगे, और जो विश्व वसु है उनके जो वंशज हैं वो क्या करेंगे, मेरे लिए कुकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं, और इनको तो पता नहीं था इंद्रद्युम्न को कि इनका प्राकट्य पहली बार कहां एग्जैक्टली ये जगन्नाथ कृष्ण बलराम सुभद्रा है या नहीं है ना, क्योंकि नारद ने कंफर्म किया इसलिए उनको ये पता चला कि ये वास्तव में भगवान कृष्ण है जो द्वारकाधीश है, द्वारका के निवासी हैं। तो भगवान कृष्ण इस जगत में प्रकट हो जाते हैं वृंदावन में या मथुरा में, और वो क्या करते हैं, आपने नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं ब्रज में, और जो 5 प्रकार के भाव हैं शांत दास सत्य वात्सल्य और माधुर्य, इन भाव इन रसों से अपने भक्तों के प्रति आदान प्रदान करते हैं। तो जो परम भगवान कृष्ण है वो वास्तव में गोकुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, कहा यशोदा के गर्भ से। तो ऐसे भगवान गोकुल में प्रकट होते हैं, और बल्कि मथुरा में तो भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, शास्त्र वर्णन करते हैं। लेकिन मूल जो कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन को कभी त्यागते नहीं है, वृंदावन परित्यज पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को त्याग कर एक पग भी बाहर नहीं जाते कृष्ण वृंदावन से। बाहर जाते भी है तो अपने वासुदेव के रूप में विस्तार करके वो ब्रज से बाहर निकल पड़ते हैं द्वारकाधीश के रूप में, या फिर मथुरा के जो राजा हैं उनके रूप में अपना कार्य करते हैं। तो ऐसे भगवान वृंदावन में निवास कर रहे थे, तो वृंदावन में यशोदा माता के साथ अपने वात्सल्य भाव का आदान प्रदान कर रहे थे, अलग अलग आसुरों को मार रहे थे, गोचारण की लीला कर रहे थे, और जब और गोपियों के संग में रास आदि क्रीड़ाओं में भाग ले रहे थे वंशीवट केशी घाट आदि में। तो ऐसे कृष्ण जब 11 साल के हुए तो उस समय अक्रूर मथुरा से आते हैं। अक्रूर जब मथुरा से आए भगवान को ले जाने के लिए, तो अक्रूर ने कहा कि हे कृष्ण आपके जो माता पिता हैं वसुदेव देव की, उनको कंस मारने वाला है, आप जल्दी चलिए। भगवान ने कहा मेरे माता पिता वो नहीं है, मेरे माता पिता कौन है? नंद महाराज और यशोदा माता है, वही मेरे असली माता पिता हैं। और उन्होंने कहा कि वो मेरे माता पिता हैं, लेकिन नंद यशोदा देवकी और जो वसुदेव हैं वो उनके मित्र हैं नंद और यशोदा के, इसलिए मैं क्या करूंगा उनको बचाने हेतु मैं मथुरा जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण का इतना अधिक आपने जो भक्त हैं ब्रजवासी गण हैं उनसे बहुत अधिक प्रीति का संबंध था, बहुत घनिष्ठ भगवान उनसे प्रेम करते थे। तो एक बार नारद ऐसे घूमते घूमते द्वारका आए, क्योंकि नारद का काम ही है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना, है ना। नारद कुछ छोटे मोटे काम नहीं करते, वो ऐसा काम करते हैं कि जो सबको अचंभित करने वाला है, भगवान को भी और उनके भक्तों को भी। तो ऐसे नारद जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा रुक्मिणी के महल में, तो वहां बहुत सारी रानियां एकत्रित हो गई थी, 16,108 रानियां। अब सोचो एक ही जगह में, एक ही पैलेस, एक ही महल में इतनी रानियां एकत्रित हो जाती, तो अब सोचो कृष्ण ने एक एक रानी के लिए कितना बड़ा महल बनाया होगा। तो ये रानियां आज विशेष रूप से एकत्रित हुई थी, उनका प्रयोजन क्या था? एक ही प्रयोजन था, और उनकी चर्चा का विषय कौन थे? कृष्ण थे सारे रानियों का। और उनमें जो प्रमुख है 8 रानियां, और उनमें से भी सत्यभामा और रुक्मिणी प्रमुख हैं। तो ऐसी सत्यभामा और रुक्मिणी जब वह एकत्रित हुई थी सारी रानियों के संग में, तो नारद वहां गए, उन सब ने नारद को आसन दिया, लेकिन नारद आसन नहीं ले रहे थे, नारद उन रानियों का गुणगान कर रहे थे कि आप कितने भाग्यशाली हो कि कृष्ण की आप सेवा में लगी हो, और आप कृष्ण के सारे सेवकों में सर्वोत्कृष्ट सेवक हो, और पूरा जो जगत है आपको प्रणाम करता है। और नारद ने कहा मैं भी अपना जो प्रणाम है वो आपको अर्पित करना चाहता हूं। तो नारद जानबूझ के ये दिखाना चाहते थे और एक चीज को रिवील करना चाहते थे कि वास्तव में इस जगत में टॉप मोस्ट कृष्ण भक्त कोई है, या कृष्ण से सर्वाधिक प्रीति कौन रखता है, इसका उत्तर पूरे विश्व को प्रदान करने वाले थे। तो ऐसे नारद वहां गए, उन्होंने उनका बहुत प्रशंसा किया। तो उस समय रुक्मिणी और जो सत्यभामा है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चों को साइड में ले जाइए प्लीज। तो जो रुक्मिणी है और सत्यभामा जब नारद की इस वार्ता को, प्रशंसा को सुनते हैं तो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि हमने जब से शादी किया है भगवान के साथ, जब से हम विवाह बंधन में बंध चुके हैं, तब से हमने कभी भी उनको सुखी नहीं देखा है, तब से क्या देखा है वो हमेशा दुखी हैं। तो इन महीनों ने कहा कि हम तो सारी 16,108 प्राणियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उन्होंने कहा कि हम सारी रानियां अकेले कृष्ण की सेवा में लगी हैं, लेकिन फिर भी वो कभी सुखी नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं है, हमेशा वो दुखी हैं। हमें इतनी योग्यता है, हम इतनी क्वालिफाइड है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, हमें अलग अलग कलाएं हैं, हम इतनी सुशिक्षित हैं, शहर में रहने वाली हैं, है कि नहीं, हाँ हमारे पास सौंदर्य है, तो लेकिन फिर भी वो हमसे संतुष्ट नहीं है, क्या क्या रीजन है, क्या कारण है? रुक्मिणी ने कहा कि मैं रोज किसी चीज को देखती हूँ, और ऐसे नहीं कि कभी कभी, हर रोज मैं एक चीज को देखती हूँ कि कृष्ण मेरे महल में रात को सोते हैं तो स्वप्न में रोने लगते हैं, कभी कभी मेरे क्या मेरे इसको वेणी छोटी स्त्रियों की भी छोटी होती है वेणी ना, पता नहीं क्या नाम है हिंदी में। तो रुक्मिणी कहती है कि मेरे बालों को पकड़ के भगवान रोते हैं और चिल्लाते हैं, ओ राधा राजा रानी, हे ललिता, हे विशाखा, तुम कहाँ हो? अगर रुक्मिणी के बाल खींचते हुए पकड़कर भगवान निद्रा में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तभी कहते ओ यशोदा माता आप कहाँ हो? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे बटर मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, और मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूँ, आपका स्तनपान करना चाहता हूँ, आप कहाँ हो? कभी कभी वो चिल्लाते हे सुबल, हे मधुमंगल, हे कोकिल, हे दाम, हे श्रीदाम, हाँ हे भृंग, आप कहाँ हो? मुझे पता है कि गव्य काफी देर से इंतजार कर रही है, हमें आपके साथ जाना चाहता हूँ, टाइम हो गया है गोचारण को जाने के लिए, गोचारण जाने के लिए। जिस प्रकार से भगवान द्वारका में होकर इतने सारे रानियों के बीच में होकर उनसे इतनी सेवाओं को स्वीकार करने के बावजूद भी वो सुखी या संतुष्ट नहीं थे, तो ये जो क्वेश्चन मार्क इनके लिए बना हुआ था सारे रानियों के लिए। और वो कभी कभी चिल्लाते थे, अपने गायों का नाम लेते थे, श्यामली, धवली, कालिंदी, हाँ, तो इस प्रकार से कहा करते थे कि हे गौमो आप कहा हो? पूर्ण रात रुक्मिणी ने कहा, हर रोज मैं देखती हूँ कि पूर्ण रात भगवान रोते हैं और उनके आंसुओं से सारा जो पिलो है, बेड है, वो पूर्ण रूप से गीला हो जाता है, तो हम बहुत अधिक दुखी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कृष्ण के प्रिय नहीं हैं और हम उनको संतुष्ट करने में, सुखी करने में सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। तो सत्य मामा कहते रुक्मिणी तुम सही कह रही हो, कल की घटना है, अभी अभी रिसेंटली कल ही ये बात हुई है। सत्य मामा ने कहा कि सखी कल रात को मैंने देखा कि मेरे भी बालों को पकड़कर कृष्ण इसी प्रकार से चिल्ला रहे थे, हो राधा, हे ललिता, हे विशाखा, हे यशोदा मैया, हे नंद महाराज, और ये बोलते बोलते भगवान मूर्छित हो जाते हैं। तो क्या इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इतिहास है, हम जानना चाहती हैं। तो ये जो चर्चा है ये कहाँ हो रही थी? रुक्मिणी के महल में, हाँ, बेट द्वारका में। दो द्वारका है ना, तीन द्वारका है, बेट द्वारका है और एक गोमती द्वारका है, एक मूल द्वारका है। तो भगवान तो अपना ऑफिशियल एक्टिविटीज करने के लिए गोमती के किनारे जो द्वारका है वहां जाते थे, जहां उनका सभा भवन था, सुधर्मा सभा, जो देवताओं ने उनको प्रदान किया था। तो वो ऐसा सुधर्मा सभा भवन था कि वहां ऑडिटोरियम कह सकते हैं उसको, वो सारे सुविधाओं से पूर्ण था और जो मन की इच्छा करोगे उसके अनुसार वातावरण उस सभा भवन में प्रकट हो जाता था। चाहे 100 लोग बैठे तो वो छोटा हो जाता था और जितने मर्जी बैठे 1000 10000 उतना एक्सपैंड करता था वो सभा भवन अपने आप को, इतना पावरफुल था। तो ये डिस्कशन भगवान ऑफिस जाने के बाद हो रहा था किनके घर में? किनके घर में? रुक्मिणी के महल में। तो भगवान वहां सभागृह में उग्रसेन, बलराम, उद्धव आदि के साथ विचार विमर्श कर रहे थे अपने राज्य के बारे में, और उसी समय भगवान थोड़े से उदासीनता महसूस करने लगे। क्यों क्यों भगवान उदास हो गए वहां इतना अच्छा वातावरण रहने के बावजूद भी? क्योंकि नारद ने एक बार भगवान को पूछा था, भगवान मैं बहुत अधिक भ्रमण करता हूँ, इधर उधर जाते रहता हूँ, बहुत लोग आपके बारे में पूछते रहते हैं मुझे और आपका एड्रेस भी पूछते हैं, क्योंकि वो बहुत कुरियर्स भेजना चाहते हैं आपको, है कि नहीं? आपने तो बोल दिया है पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो देना चाहते हैं, कोई ना कोई कुछ आपको ऑफर करना चाहता है, तो बताइए आप एड्रेस बताइए, कौन सा एड्रेस बताओ मैं आपको, उन लोगों को कुछ एड्रेस होना चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा एक ही एड्रेस है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वहां, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो योगी गान मुझे अपने हृदय में ध्यान करते हैं, उसमें बंद कराना चाहते हैं, उस स्थान में मैं कभी नहीं रहता। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, लेकिन एक स्थान में जरूर रहता हूं, यत्र गायन्ति मद भक्त, जहां मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला धाम आदि का वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, उस स्थान में मैं निवास करता हूं। तो भगवान, क्योंकि अभी यहां कृष्ण कथा शुरू होने वाली थी, कहा? रुक्मिणी के महल में, और वहां भगवान की ही चर्चा हो रही थी, तो भगवान ये अस्वस्थ हो गए। भगवान को लगा कब मैं जाऊंगा, क्या सुनने के लिए, अपने बारे में सुनने के लिए, किसको अच्छा नहीं लगता अपना गुणगान। भगवान भी तो पर्सन है, हम सबको तो कान हमारे खड़े हो जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर कोई हमारा नाम लेता है, कोई हमारा गुणगान करता है। भगवान का जैसे चर्चा शुरू होता है, भगवान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने तो बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन ने कहा भगवान चल चल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़, हे भगवान आप बताओ मेरा मन बहुत चंचल है, आप जो योग आदि की बात कर रहे हैं मैं प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान बोल रहे अभ्यास है तो कम कह, बल्कि कृष्ण का मन भी बहुत चंचल है कि नहीं, वो खुद ही बोल रहे हैं, अर्जुन अर्जुन को अर्जुन का ही चंचल नहीं है, कृष्ण का भी चंचल है, क्योंकि जहां कृष्ण कथा होती है कृष्ण अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान ने जब इस चीज को सुना, क्योंकि भगवान बहुत अटेंटिव है हियरिंग में, दूर से भी वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। एक बार भगवान बहुत छोटे से बालक थे, उस लीला से आप परिचित होंगे, यशोदा माता उनको सुना रहे थे, और उस समय भगवान, आजकल तो बच्चों को कहाँ सुलाती है माता, है कि नहीं, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, वो बच्चा टीवी के सामने बैठे बैठे सो जाता है। आजकल तो रहा ही नहीं, लविंग रेसिप्रोकेशन, प्रेम का आदान प्रदान, माता और बच्चे का जो संबंध है, पिता माता पिता का दर्शन के साथ, अभी तो टीवी उनके लिए तुम्हें हो माता, सब कुछ वही है, वन आई गुरु, सब कुछ वही है, टीवी बॉक्स दे दिया, अपने सारे जिम्मेदारी से खत्म। हमारे भक्त कहते हैं जो श्रिया है आजकल की, वो कुकिंग करने के लिए चली जाती है तो बच्चे के हाथ में वो रिमोट पकड़ा के बिठा देती है पुतना के सामने। टेलीविजन क्या है, पुतना है, सुंदर रूप है लेकिन वो बहुत भयावह है। हाँ, बच्चे को चूस 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 लेती है, उसके संस्कार उसके सब कुछ खत्म कर डाल देती है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन है। तो मदर यशोदा भगवान को सुला रहे थे, सुलाते सुलाते अभी सुलाएंगे तो थोड़ी फिल्मी गाने गाएंगे, वो गा रहे थे, भगवान को कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा हे कृष्ण, एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था, राम कथा सुना रही है भगवान को, वो दशरथ उनके 4 पुत्र थे, भगवान राम उनमें से प्रमुख थे, और इसी कारणवश उन राम को अपनी भार्या सीता के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास जाना पड़ा, और जब वो वनवास गए तो वहां सीता का हरण हो जाता है, अपहरण। तो भगवान जब सो रहे थे, लेटे हुए थे, मदर यशोदा उनको थप थपा के सुना रही थी, कंबल उन्होंने ओढ़ा होगा, ठंड के दिन होंगे, तो भगवान ऐसे बीच में कह रहे हाँ हाँ ठीक है सुन रहा हूँ, बोलो आगे आगे बढ़ो आगे कहो। तो फिर भगवान ऐसे सुनते जा रहे थे, जब मदर यशोदा ने ये शब्द बोले कि सीता देवी का अपहरण हो गया रावण के द्वारा वनवास के समय में जंगल में, तो भगवान जो लेटे हुए थे पूरा खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर हे सौमित्रे, सौमित्रे कौन है, लक्ष्मण है, सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, अभी सोने की तैयारी में है, कंबल ओढ़ रहा है, भगवान ओढ़ रहे हैं और अभी तुरंत खड़े हो गए, क्या धनुष चाहिए, इसको कहते अटेंटिव हियरिंग, मतलब उस लीला में प्रवेश करना। हाँ, कुलशेखर का उदाहरण आता है, जिस प्रकार से भगवान इतना ध्यान पूर्वक सुनते हैं अपनी ही कथा को, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब उन्होंने ये देखा कि यहां मेरी चर्चा हो रही है, तो उस समय भगवान यहां अटेंटिव हो गए सुधर्मा सभा में, और फिर वहां जब रुक्मिणी के महल में सारे लोग एकत्रित हो गए थे, नारद मुनि थे, सारी रानियां थी, उनकी चर्चा का विषय कृष्ण, हाँ थे कृष्ण इन द्वारका थे, है ना, कृष्ण अलग अलग जगह हो सकते हैं, कृष्ण इन द्वारका, उनकी ये सिचुएशन है अभी की जो परिस्थिति है, फिर उसी समय उस महल में बलराम की जो माता है रोहिणी प्रवेश करती, तो सारी रानियां खड़ी हो जाती हैं, उनको प्रणाम आदि करती है, उनको आसन देती है और उनको एक प्रश्न पूछती है रोहिणी को कि हे रोहिणी, हे रोहिणी माता, आप तो 11 साल वृंदावन में रह चुकी हो और आपने कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं को देखा है, ब्रज में आप रही हो, तो आप ये जो गोपिकाएं हैं ना वृंदावन के जो निवासी हैं उनके हिस्ट्री को जानती होंगी, हम सब उसको जानना चाहते हैं, उनके प्रेम के स्वभाव के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका प्रेम इतना प्रभावशाली क्यों है, कैसे इतना प्रगाढ़ और प्रभावशाली है वृंदावन वासियों का प्रेम जिसको कृष्ण आज तक भूल नहीं पा रहे। और भगवान को 100 साल हो गए थे लगभग वृंदावन को छोड़कर द्वारका में, वे ये सारे रानियां कहते कि अभी तक क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा हमने तो 50 साल से हमारा शादी हुआ है, उनकी सेवा में लगी हैं, फिर भी उनके मुख में हमारा नामोच्चारण नहीं होता, सोते हुए कभी नहीं कहते और रुक्मिणी और सत्यभामा, वो हमसे परेशान है शादी के बाद, है कि नहीं, अगर उनका नामोच्चारण हो रहा है, यशोदा है, ग्वाल बाल है, गव्य है, गोपिकाए है, नंद महाराज है, इन सब का नामोच्चारण हो रहा है, बताइए बताइए क्या कारण है। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने फिर वही चीज रिपीट की, उन्होंने कहा ये सीन है, रात को सोते समय यशोदा का बारे में चिल्लाते हैं, गवों के बारे में चिल्लाते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि हे मदर यशोदा, आप जल्दी मुझे मक्खन आदि दे दो, मेरे जो मित्र हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं, मेरे बिना वो जाने के लिए तैयार नहीं है, मित्र ही नहीं बल्कि गव्वे भी चिल्ला रही हैं, वो अपने बछड़ों को दूध भी नहीं दे रही हैं, आप जल्दी मुझे मक्खन दे दो, दही दे दो, मुझे उसको ग्रहण करके निकलना है, बाहर जाना है। तो इस प्रकार से रोहिणी माता को इन सब ने अपना दुख सुनाया, तो इन्होंने कहा कि हे रोहिणी माता, आप बताओ कि ऐसे ब्रजवासियों के पास, वृंदावन के निवासियों के पास क्या चीज है, हम तो देखती हैं कि वो सारी गोपिकाएं हैं, वृंदावन वासी तो जंगल में रहने वाले हैं, उनके पास ना धन है, ना सोना है, ना चांदी है, हमारे पास तो इतने आभूषण है, उनके पास इतना अच्छा सौंदर्य भी नहीं है, वो गांव की बाला है क्या उनके पास सौंदर्य है, हाँ हम शहर के रहने वाले हैं, हमारे पास सौंदर्य है, आभूषण है, धन है, और वो तो अपने आप को अपना श्रृंगार केवल फूलों से करती है, पत्तों से करती है। तो इस प्रकार से वो रानियां कहने लगी, रुक्मिणी कहती कि मुझे लगता है कि उनको कुछ मैजिक जादू टोना जानती है शायद वो वृंदावन की निवासी, या हमारे कृष्ण के ऊपर उन्होंने कोई जादू की है, मैजिक की है, या फिर वो कोई एक मंत्र जानते होंगे जिस मंत्र के द्वारा वो लोग क्या कृष्ण को उन्होंने क्या किया है, अपने वश में किया है। और वास्तव में एक मंत्र है जो भगवान को वश में कर सकता है, हरे कृष्णा तो उन्होंने जाना, उन्होंने कहा शायद कोई मंत्र है जिनके द्वारा भगवान को उन्होंने अपने वश में किया है और हम 16108 होकर भी एक कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, वहां यशोदा माता अकेली है फिर भी कृष्ण क्या है उनसे संतुष्ट है, उनकी सेवा से, उनकी कार्यकलाप से। तो इस प्रकार से रोहिणी ने फिर अभी लेक्चर देना शुरू किया, कितने लोग बैठे थे लेक्चर में, 16108 रानियां। और जैसे ही रुक्मिणी देवी ने अपने बीते हुए ब्रज के 11 सालों का उनको तुरंत स्मरण हो आया, और वो जैसे उन्होंने यशोदा माता, नंद महाराज, ब्रज की गोपियों का स्मरण किया, उसी क्षण रोहिणी के आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी, और फिर उन्होंने सारे भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, बहुत सारे लीलाओं का वर्णन किया कि ब्रज में ऐसे हुआ, ब्रज में ये हुआ, वृंदावन में ये हुआ, और ये सब वर्णन किया। तो उसी समय कंस की जो माँ है उस गैदरिंग में गलती से पहुंच गई, जिनका नाम क्या था, पद्मावती। तो पद्मावती वहां पहुंच गई, वहां पहुंच जाती है पद्मावती, और पद्मावती उनको कहती है, उनको देखकर उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, ये बहुत डेंजर विषय की चर्चा कर रहे हो आप। और उन्होंने सुना, पद्मावती ने सुना कि ये सारी रानियां और ये जो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, रोहिणी है, ये वृंदावन के चर्चा कर रही हैं। उन्होंने कहा ये गलत है, ये वृंदावन वासियों की कभी चर्चा मत करना, क्योंकि वो लोग बहुत क्रूर हैं, निर्दयी हैं। इन्हें पद्मावती ने कहा आप नहीं जानती, वो जो यशोदा है उसको तो कभी पालन पोषण करना आता ही नहीं है, कृष्ण और बलराम का कभी उन्होंने ठीक ठाक पालन नहीं किया है। तो ये पद्मावती कहने लगी कि आप जानती हो कि वास्तव में कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं, लेकिन उनको कंस के भय से गोकुल भेजा गया था, और वो बेचारे कृष्ण अभी क्या करेंगे, दूसरे के घर में रह रहे हैं, वो यशोदा उनको कभी मक्खन देती नहीं थी, इसलिए वो दूसरों के घर में जाकर चोरी किया करते थे। कितनी निर्दयी है, इतना सारा 9 लाख द्रव्य होने के बावजूद भी विपुल मात्रा में दही है, मक्खन है, दूध है, इतना होकर व्यक्ति अपने घर के नौकर को भी दे देता है, लेकिन यशोदा इतनी निर्दयी है कि वो कृष्ण को कभी भी नहीं देती थी, इसलिए वो बेचारे को बचपन से दूसरों के घर में जाकर चोरी करनी पड़ती थी और खाना पड़ता था, और कभी कभी वो जो पड़ोसी गोपियां हैं वो कंप्लेंट करने के लिए आती थी, तो ये निर्दयी यशोदा कृष्ण को बांध के उखल को रखती थी, यदि चोरी करते हो दूसरों के घर में जाकर, तो कहती उनको अंदर कोई दया नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा उनसे बहुत ही से नंद महाराज यशोदा ने कृष्ण से बहुत बचपन में काम करवाया है, एक तो खिलाते नहीं थे, दूसरा उखल को बांध के रखते थे, और तीसरा बचपन से गव्य चराने भेजते थे। उन्होंने कहा ये बहुत अधिक क्रूरता है, अभी गव्य चराने भेजना ठीक है, कम से कम जूते तो देने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके चरण इतने कोमल हैं, और इतना धूप है, कम से कम एक छाता दे देते तो क्या बिगड़ता क्या उनका, नंदा और यशोदा का। इस प्रकार से पद्मावती ब्रजवासियों को डांट रही थी, ब्रजवासियों के प्रति इस प्रकार के उद्गार निकाल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा एक बार कृष्ण को उन्होंने बांध दिया, जैसे कृष्ण को बांधा तो उस जो यशोदा है उनके अंदर कोई दया भी नहीं आई, उन्होंने बल्कि बांधा और ऊपर से छड़ी ले ली उनको मारने के लिए, और बेचारे छोटा सा बच्चा बालक कृष्ण रोने लगा भय के कारण, मुझे छोड़ो, कहते उस नंद यशोदा से मेरे पति उग्र से बहुत अधिक दयालु है। तो इस प्रकार से ये जो पद्मावती है ब्रजवासियों के प्रति ये उद्गार निकाल रही थी, और वो कह रही थी कि कुछ थोड़ा दूध दिया होता तो क्या बिगड़ता, कुछ कपड़े देते कृष्ण को लोग तो क्या बिगड़ता, इस प्रकार से बातें कर रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान ने उनके घर में बहुत गव्य चराई है, तो हम उनसे उतना जो धन है, इतने सालों तक उन्होंने उनकी नौकरी की है वहां भगवान ये कृष्ण को, तो वो जितने भी साल हुए हैं हर महीने का कुछ ना कुछ सैलरी हम ले लेते हैं उनसे, इसलिए आप सब क्या करो, हे रोहिणी गर्गाचार्य को बुलाओ, गर्गाचार्य अकाउंट रखने में एक्सपर्ट है, उनको बुलाते हैं, 11 साल का पूरा अकाउंट डिटेल्स निकालते हैं और उतना धन हम उनसे ले लेते हैं। तो जैसे ही ये सुना रोहिणी ने, तो रोहिणी पर गुस्सा बहुत पड़ गया, उन्होंने कहा मैं जानती हूँ हे कंस की माँ तुम कौन हो, तुम पतिव्रता स्त्री नहीं हो, कंस वास्तव में उग्रसेन का पुत्र नहीं है, उग्रसेन का पुत्र नहीं था, तुम जब यंग थी तुम्हारे विवाह के बाद तुम अपने सहेलियों के संग में यमुना के किनारे गई थी, तो जो आसुर है द्रुमिल वो आपके प्रति आकृष्ट हो जाता है, और उसके संग के कारण वास्तव में ये कंस तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता है। तो क्या जानोगे तुम, कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम को जानने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है, तुम निम्न कोटि की भावना को रखती हो, हाँ इस दिव्य प्रेम को तुम कदापि समझ नहीं सकती। तो रोहिणी ने क्या किया, रोहिणी फिर सारे आनंद महाराज, यशोदा माता, ग्वालपाल, इन सबके जो दिव्य सेवा का मूल है उसका वर्णन करने लगे। हाँ, क्योंकि कृष्णा बारंबार पीछे लगते थे नंदा महाराज यशोदा के पीछे कि मुझे गव्य चराने के लिए भेजो। उनका मन कदापि नहीं होता था भगवान एक क्षण उनके सामने से अलग हो जाए। उनके लिए तो युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन। जब नंदा और यशोदा को कृष्ण एक क्षण भी उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि भगवान को देखकर एक युग कई युग बीत गए हैं, ऐसा महसूस होता था, इतना प्रीति। इसलिए तो गोपिकाएं कहती है कि ये जो ब्रह्मा है ये सृष्टि करना नहीं जानता। क्या सृष्टि नहीं करना जानता, क्योंकि उसने ऐसी आंखें बनाई हैं कि वो आंखें हमेशा उसके जो निमिष पल के झपकती रहती हैं। हम तो कृष्ण को बिना पल के झपके एक साथ एक टक देखना चाहती हैं, लेकिन एक छोटे पल के थोड़े समय के लिए झपकते वो भी गोपियों को कृष्ण को देखने में बाधा महसूस होती है। तो ये है दिव्य प्रेम। तो इस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा आदि उनको कभी भी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर गोचारण करने के लिए जाए, गौ चराने के लिए। बल्कि माता यशोदा, जो पहला ही दिन था गोपाष्टमी का, जब भगवान बछड़े चराने के लिए निकलते हैं या गौवे चराने के लिए निकलते हैं, उस समय नंद महाराज और यशोदा ने उनके लिए जूते भी लाए थे, लेकिन भगवान किनसे प्रेम करते हैं, गौवा से। भगवान ने कहा जो गोप है, गोप का मतलब ही है जो गौओं के रक्षक है। तो हे नंद महाराज, यशोदा माँ, आप मेरे लिए है जूते ला रही हो तो आपको किसके लिए जूते लाने चाहिए, और सारे गौओं के लिए भी जूते होने चाहिए। मेरे लिए आपने अम्ब्रेला लाया, छाता लाया, तो आपको सारे गौओं के लिए एक एक छाता भी, अम्ब्रेला भी लाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो भावना था गौओं के प्रति, और इवन गौओं के प्रति नहीं बल्कि गौओं का प्रेम भी कृष्ण के लिए बहुत अधिक था। जब कृष्ण पहले दिन गौओं को चराने के लिए निकले तो जनरली गौओं को चराने के लिए जब निकलते हैं तो गव्य आगे चलती है और जो चराने वाला है वो उनके पीछे पीछे चलता है। तो ये जब सेरेमनी हुआ, भगवान को पहली बार गोपाल नाम दिया गया, गोपाल की सेवा मिली गौओं का पालन करना, तो उस समय गव्य आगे चल ही नहीं रही थी, एक कदम भी नहीं उठा रहे थे। गौओं ने सोचा यदि कृष्ण हमारे पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन का क्या लाभ, हम अपनी आंखों से कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण कभी गौओं के पीछे नहीं चलते थे, और कृष्ण गौओं को मारने के लिए रस्सी या छड़ी अपने हाथ में नहीं रखते थे, वो तो आसुरों के लिए था। कृष्ण गौओं के सामने चला करते थे और गौवे उनको देखकर चलते थे। तो ये उनका प्रीति था। ब्रज का मतलब है, वृंदावन का मतलब है कि जहां कि जो निवासी है, प्राणी है, पेड़ है, पौधे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष है, बच्चे हैं, सबका जो जीवन या प्राण का जो आधार है या लाइफ के जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो कृष्ण थे। तो इस प्रकार से रोहिणी माता इन सब का वर्णन करने लगी। रोहिणी ने कहा कि एक बार यशोदा माता को किसी गोपी ने कहा कि आप ये जो आपका कृष्ण है वो मक्खन को चुराता है, तो उस मक्खन को बच्चों के लिए कोई तो शांति जाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो जो यशोदा माता है उनको एक बार किसी ने कहा, गोपियों ने कहा, गोपियों ने बोला कि आपके कृष्ण हैं जो मक्खन चुराते हैं, तो कृष्ण को एक दिन यशोदा माता पकड़ती हैं और उनको कहते हैं कि आपने मक्खन की चोरी की है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं है माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मक्खन खायो, हे मदर यशोदा, मैंने माखन नहीं खाया है, अब देखो तुम्हारे सामने ही मैं सुबह गौओं को चराने के लिए लेकर गया मधुवन में, और मधुवन में पूरे दिन गौओं के साथ रहा और गौओं को लेकर मैं वापस अभी आया हूँ, शाम को पहुंचा हूँ। और शाम को पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपके हाथ से भोजन मैंने ग्रहण किया और तुरंत हाँ सोने चला गया। तो मुझे कहाँ टाइम मिला बीच में, मक्खन चुराने का टाइम नहीं मिला। तुम कहती हो कि तुमने मक्खन चुराया है, हाँ तुम मुझे चोर कहती हो, इसका मतलब है मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, ऐसे भगवान कहने लगे। भगवान ने कहा शायद तुमने मुझे गोद में लिया है या दत्तक, हाँ किसी और का, किसी और ने मुझे जन्म दिया होगा और तुमने वो स्त्री छोड़ के चली गई होगी मुझे, और तुमने मुझे रखा है। इस प्रकार से भगवान अपने मदर यशोदा के प्रेम को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे थे, और इसलिए कृष्ण ने कहा तुम मुझे बार बार चोर कहती हो, तो मैं अभी यमुना में जाके कूद लगाऊंगा, जंप लगाऊंगा, मैं अभी और अधिक जीवित नहीं रहना चाहता। यशोदा माता जोर से रोने लगी, हाँ उन्होंने कहा कि तुमने कभी भी मक्खन की चोरी नहीं की है। तो फिर भगवान कहते हैं हाँ मैंने ही माखन खाया। फिर अभी भगवान ने कहा है, उन्होंने देखा कि मदर यशोदा का इतना प्रेम मेरे प्रति, मैंने थोड़ा सा उसकी परीक्षा लेने के लिए ये क्या बोल दिया, तो वो हाँ बिल्कुल मूर्छित होने वाले थे इस चीज को सुनकर। तो उन्होंने कहा जब मदर यशोदा को इन्होंने कहा कि हे मदर, हाँ हे माँ, मैंने ही माखन को खाया है, ये देखकर अरे सुनकर माता यशोदा के आंखों से आंसू बहने लगे, उनके स्तन से दूध बहने लगा और भगवान का इस प्रकार से अभिषेक हुआ। तो उन्होंने कहा, फिर मदर यशोदा कहती है कि मैं फिर से कभी ऐसे बोलूंगी नहीं ना तुम्हें। तो रोहिणी कहती देखो वो जो पद्मावती है इसी प्रकार से कुछ भी बोल रहा, कहते ना जीव को ये नहीं होता, हड्डी नहीं होता है कि नहीं, जीव जैसी मर्जी चलाओ बहुत धारदार है, इसलिए जीव का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जीवाग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, जीव के आगे। हाँ जीव से ही प्रेम और शत्रु के संबंध बनते हैं। तो जब रोहिणी ये सब वृंदावन वासियों का गुणगान करते जा रहे थे, और ये गुणगान शुरू होने से पहले सारी रानियां जब सुन रही थी, उस समय रोहिणी माता ने कहा था कि बीच में कोई पुरुष आना नहीं चाहिए यहाँ, और उनको पता था जैसे मैं ब्रज का वर्णन करना शुरू करूंगी कृष्ण चाहे जहां मर्जी हो कृष्ण आकर इस महल के सामने दरवाजे में खड़े हो जाएंगे। तब तो उन्होंने देखा कि कौन दरवाजे में खड़े हो सकता है, देखा सारी सीनियर माताएं बैठी है, तो सबसे जूनियर कौन थी, सुभद्रा, बच्चे हैं उनको कुछ भी सेवा में लगा है ना। तो सुभद्रा को कहा कि अभी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है, तुम दरवाजे में जाके खड़े रहना, और कैसे खड़े रहना, ऐसे इधर एक हाथ इधर एक हाथ और बीच में रहना। सुभद्रा जी गए, सुभद्रा रोहिणी की पुत्री है, रोहिणी माता की बेटी है। तो सुभद्रा जब गए और वो खड़ी हो गई वहां, और यहां सुधर्मा सभा में कृष्ण को रहाने जा रहा था, कृष्ण सोच रहे थे कि कब मैं भागूंगा यहां से, बोझ लग रहा था उनको सारे कार्यकलाप, क्योंकि उनका ब्रज लीला कहानी उनको अट्रैक्ट कर रहे थी उनके हृदय को। तो भगवान उस स्थान को छोड़कर यहां आके पहुंच जाते हैं, और सुभद्रा कहते देखो और बलराम भी थे और कौन थे, कृष्ण थे। उन्होंने कहा नो एंट्री, पुरुषों को एंट्री नहीं है, मेंस आर नॉट अलाउड, तो उन्होंने रोक दिया, आप यहाँ रहो और बाद में जब डिस्कशन खत्म होगा तब आप अंदर जा सकते हो। तभी सुभद्रा महारानी भी अटेंटिवली सुन रहे थे उनके, ईश्वर कौन खड़े हो गए, जगन्नाथ कृष्ण खड़े हो गए, और फिर बलराम इस तरफ खड़े हो गए, और ये तीनों दरवाजे से ही ब्रज लीला कहानी जो नरेट कर रही थी, वर्णन कर रही थी रोहिणी, उनके द्वारा श्रवण किया जा रहा था। तो रोहिणी ने आगे कहा क्योंकि जो ब्रजवासी हैं उनका जो प्रेम है कृष्ण के लिए सर्वाधिक है, जो ब्रजवासी गण है कृष्ण से बहुत अधिक प्रीति रखती है, रखते हैं वो उनको अपने पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में या प्रेमी के रूप में सदैव सोचते हैं और सदैव उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में जब होते हैं तो सदैव अपने मोर मुकुट मोर पंख धारण करते हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की, और सदैव अपने वेणु का वादन करते हैं, इसलिए उनको गोपीजन वल्लभ कहा जाता है। हाँ, तो ऐसी जो गोपियां हैं उनका कोई फॉर्मल संबंध नहीं है कृष्ण से, लेकिन बचपन से ही गोपिकाओं ने, वृंदावन के वासियों ने अपना जो हृदय है, अपना जो मन है, वो कृष्ण को अर्पित कर दिया है, कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं जानती। हाँ, और इसी कारण से कृष्ण उनके प्रेम को चुका नहीं पाते, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, जो जितना मेरा भजन करेगा कि अर्जुन उतना ही मैं भी उसका भजन करूंगा। लेकिन कृष्ण का हृदय है वो भी कई भागों में बटा हुआ है, और रोहिणी ने कहा कि लेकिन गोपिकाओं का जो प्रेम है, वृंदावन के वासियों का जो प्रेम है, वो 100% केवल केवल कृष्ण के लिए है। लेकिन आप तो जो रानियां हो द्वारका की, आपका जो हृदय है केवल कृष्ण के लिए नहीं है, आपके हृदय के 12 भाग हो गए हैं। तो रुक्मिणी ने पूछा कैसे 12 भाग हो गए हैं, हम तो सोचती है कि पूरा लगे हुए हैं, हम तन मन धन से लगे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये ऊपर ही दिखावा है, आप पूर्ण रूपे न कृष्ण की सेवा में नहीं हो। हाँ, क्योंकि आपके तो 11 बच्चे हैं, 10 पुत्र है, 1 पुत्री है, और फिर 11 के बाद कृष्ण 12 है। हाँ, इसलिए आपका हृदय जैसे जनरल भी भौतिक जगत में देखते हैं, शादी से पहले पति पत्नी का बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, बच्चे ने जन्म ले लिया तो पत्नी का आधा प्रेम बच्चे में चला जाता है, पति के लिए कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता, फिर कम सुनाई देता है कि नहीं, कुछ भी पति कहता है। तो उसी प्रकार से रोहिणी ने कहा कि आपका जो हृदय है कृष्ण के लिए 100% नहीं है, उसके 12 भाग हो चुके हैं, लेकिन जो वृंदावन वासी हैं, गोपीदास हैं, उनका प्रेम 100% है और अखंड है, खंडा नहीं है, इसी कारण से वो सर्वोत्कृष्ट है। और ऐसी गोपिकाएं अपने घर के कार्य भी करती हैं, इवन वो झाड़ू लगाते हैं, कुकिंग करती है, तो वो सदैव एक नाम का उच्चारण करती है, गोविंद नामो धर्माधवेती, इस नाम का उच्चारण करती रहती है सदैव सारे कार्यों में। उन्होंने आपने आपको डाला है, उनके चित्त में मन में कृष्ण को डाला हुआ है, इवन वो अपने बच्चों को सुलाती है, तो ये नहीं थे कि बेटा सो जा नहीं, थप थपाती है, लेकिन क्या कहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन ब्रज में गोपिकाओं के घर में जो तोता है, उस तोते को भी उन्होंने यही रटवाया है, गोविंद दामो धर्माधवेति, कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं। तो इस प्रकार से रोहिणी ने कहा कि गोपियों का मन और जो हृदय है वो एक रथ के समान है, और उस रथ पर उन्होंने किसको बिठाया है, कृष्ण को बिठाया है, इसी कारण से वो सर्वोत्कृष्ट है। उनका जो आसक्ति है भगवान के प्रति, उस आसक्ति को शास्त्रों में समर्था रति कहा गया है। समर्था रति का मतलब है कि वो प्रेम जो भगवान को कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपका जो प्रेम है वो सामंजस्य रति है, मतलब डाउटफुल है कृष्ण को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार से रोहिणी उनका गुणगान कर रहे थे, और गुणगान करते करते उन्होंने कहा इन सारे प्रेमों में श्रीमती राधिका का जो प्रीति कृष्ण के लिए है वो सर्वाधिक है, उससे अधिक प्रीति नजर नहीं आती, इतना प्रेम कि भगवान कृष्ण प्रेम सरोवर में श्रीमती राधिका के साथ बैठे थे, श्रीमती राधिका ने अपना सर कृष्ण के गोद में रखा था, और एक भ्रमर आता है श्रीमती राधा रानी के चरणों को फूल समझकर कि कितना अच्छा कमल का फूल है, उसमें एंटर करना चाहता है, हाँ बहुत स्वीट है, सुगंधित है, टेस्टी है, ऐसा भ्रमर सोच रहा था, तो श्रीमती राधिका उसको हटाती है, हटो भागो यहाँ से, मधुसूदन भागो यहाँ से, तो वो जा ही नहीं रहा था, बार बार उनके चरणों में आ रहा था, और उनका सर कृष्ण की गोद में है उसी समय भगवान की सखा मधुमंगल आते हैं डंडा लेकर और उस ब्राह्मण को भगाते दूर भगाते हैं और वो कहते हैं और राधिका मधुसूदन को भगाया मैंने वो वापस आएगा नहीं। ब्राह्मण को दूसरा नाम भी है क्या है मधुसूदन और कृष्ण का नाम भी क्या है मधुसूदन मधुसूदन मधु राक्षस का वध करने वाले। तो जैसे राधिका ने सुना कि मधुसूदन चला गया वापस नहीं आने वाला इतना दूर मैंने भेजा है श्रीमती राधिका मूर्छित हो गई तुरंत ही वो रोने लगी। उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि शरीर त्यागने वाली है बल्कि वो भूल गए कि उनका सर अभी भी किसकी गोद में है कृष्ण की। कृष्ण तुरंत सोचने लगे ऐसा भी प्रेम मेरे प्रति ऐसा इतना आसक्ति इतना अटैचमेंट। इस प्रकार से भगवान वृंदावन वासियों के प्रेम से कंट्रोल्ड है पूरी तरह से क्योंकि भगवान का हृदय भी क्या है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अभी कृष्ण के इतने भक्त हैं भारत में है कि नहीं वो अपना फुल हृदय थोड़ी किसी को अर्पित कर पा रहे हैं। कभी वहां बालाजी के रूप में साउथ इंडियन लोगों को अटक पकड़ के रखे हुए हैं जगन्नाथपुरी में ओडिशा में जगन्नाथ जी के रूप में है गुजरात में कौन कौन से रूप में द्वारकाधीश नॉर्थ में यहाँ श्याम सुंदर है महाराष्ट्र में जाएंगे तो वह विठल के रूप में है। तो ऐसे सब जगह भगवान ने अपना हृदय बटा हुआ है वो गोपिकाओं को भी नहीं दे पा रहे इसलिए भगवान एक बार हाथ जोड़कर उनको कहते हैं न पा रहे हम कि आपका जो ये हृदय है उसको मैं पे नहीं कर सकता इतना अधिक उनका ये था गोपिकाओं के प्रति कृष्ण का भी आसक्ति था। तो ऐसे कृष्ण ने जब देखा एक बार वो गौओं को चराने के लिए जा रहे थे तो सारे सखागण उनके संग में थे सारे गवे काली सफेद गोल्डन कलर की गायें सब इकट्ठा होकर जैसे त्रिवेणी इकट्ठा हो जाती नदियां ऐसे एकत्रित हो रही थी हजारों गायें फिर से दूर जा रही थी और कृष्ण गौओं को चराने के लिए गोकुल से घर से बाहर निकल ही रहे थे तो उनको पूरा जंगल में जाने तक मदर यशोदा नंद महाराज उनके साथ जाते थे फिर कृष्ण कहते नहीं 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 आप अभी प्लीज जाइए जाइए वापस। और उस समय सारी गोपिकाएं अपने महल से विंडो से गार्डन से सब देखते रहते थे कृष्ण को। तो उसी समय कृष्ण को श्रीमती राधिका देखती हैं और उनके दृष्टिपात को कृष्ण भी स्वीकार करते हैं। उनको देखने मात्र से कृष्ण चंचल हो जाते हैं उनका जो हाथ से शास्त्र कहते हैं वेणु करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टांश पीत वसनम ब्रजराज सुनो। जैसे ही इनका इतना अधिक सेवा वृत्ति है भक्तों का श्रीमती राधिका ने जैसे भगवान को देखा तो पहले तो इतने कंपित हो गए उनके प्रेम के वशीभूत के उनके हाथ से उनकी वेणु गिर गई। उतना ही नहीं उन्होंने जो ऊपर पीतांबर वस्त्र थे ऊपर वो भी टर्मल होकर कपड़े भी गिर गए और वो मूर्छित होकर गिरने वाले थे तो उनके सखा मधुमंगल ने उनको पकड़ा कहा कि हे कृष्ण आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपके माता पिता भी यहाँ है मदर यशोदा है नंद महाराज है भगवान आपने आपको संभाल रहे हैं। तो इतना अधिक प्रीति भगवान के प्रति गोपिकाओं का था लेकिन फिर भी गोपिकाएं कहती हैं कि हमारा कृष्ण से थोड़ा भी प्रीति नहीं है थोड़ा भी सेवा की भावना नहीं है। गोपिकाओं ने जब देखा हिरण को उन्होंने देखा अरे ये हिरण का कितना प्रेम है भगवान से वो तो हमेशा के लिए भगवान को एक साथ देखती रहती है उनके सन में चलती है श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो इस प्रकार से जो मदर रोहिणी है रोहिणी माता ये सब वर्णन कर रही थी भगवान की लीलाओं को और उसी समय भगवान कृष्ण दरवाजे में थे और इस सारी लीला कहानी को वो सुनते जा रहे थे सुभद्रा के साथ और बलराम के साथ कृष्ण। और जैसे जैसे वो लीला कथा को सुनते गए वैसे वैसे उनका जो शरीर है वो पिघलने लगा मेल्ट होने लगा और कितना मेल्ट हुआ जितना वह देखते हो जगन्नाथ को उनके हाथ क्योंकि ब्रज प्रेम की भावना से उनका जो हाथ उनके जो पांव है शरीर के अंग है कृष्ण के वो अंदर चले गए। अभी ये जैसे आप देखो दोनों के ही हाथ है कृष्ण के हाथ है और दूसरे किसके हाथ है बलराम के हैं यशोदा के हाथ है क्या देखा आपने ठीक से नहीं है। तो यशोदा ने तो ऐसे हाथ किए थे और सुभद्रा ने, तो सुभद्रा के दोनों हाथ पूरी तरह से अंदर चले गए, ये दोनों हाथ खड़े होने के कारण। तो ऐसे जो भगवान है इस रूप को प्रकट करते हैं द्वारका में पहली बार, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी के रूप में। वही कृष्ण है जगत के नाम, लेकिन ब्रज प्रेम की भावना से इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि वो उनका शरीर मेल छोड़ने लगता है और शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उसी समय अंदर से नारद मुनि बैठे थे। सबसे पहले लेक्चर किसने शुरू किया था? सब कारणों के कारण तो नारद जी हैं। तो नारद ने जब दरवाजे की ओर देखा कि ये क्या है, नारद तुरंत चिल्लाने लगे, मैंने देखा। और किसने देखा नहीं था? तो नारद ने कहा मैंने देखा। भगवान ने कहा तुम्हें ही इसके कारण हो। तुम्हें आकर यदि रानियों को नहीं कहते कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप सबसे अधिक फॉर्चुनेट हो, आप कृष्ण की बहुत बड़ी सेवक हो, आपको मेरा प्रणाम अर्पित है, ये सब आप नहीं बोलते तो ये सब कहानी आगे शुरू नहीं होती। हाँ, मेरा रूप ही नहीं बदलता। तो बड़ा बड़े गुस्से भी थे, उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे द्वारका में होते हुए भी तुम मुझे ब्रज में ले गए हो, वृंदावन ले गए हो, तुमने वृंदावन में रखा है मुझे, क्योंकि कृष्ण सर्वाधिक वृंदावन से प्रीति रखते हैं। तो फिर नारद को कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कुछ मांगो। तो नारद ने कहा मैं तो एक ही चीज की कामना करता हूं कि आप यही रूप जो आपने द्वारका में प्रकट किया है, इसी रूप को आप पृथ्वी में प्रकट कीजिए, और जिसके द्वारा आप दर्शन देकर इस रूप से सारे जगत का उद्धार कीजिए, यही मेरी कामना है। तो ये उन्होंने कहा, और आपका जो दर्शन है वो पतित पावन रूप के हो, पतित पावन के नाम से आप प्रकट हो जाने चाहिए या फेमस हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से नारद के जो इच्छा था जिसको पूर्ति करने के लिए भगवान ने कहा, दोस्तों भगवान ने कहा हम तीनों नहीं बल्कि हम तीनों के साथ सुदर्शन भी होंगे। हाँ, सुदर्शन देखो कैसे वहां खड़े हैं, एक डंडे के समान खड़े हैं। सुदर्शन तो जनरली गोल होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में और एक लीला हो गई जिसके कारण वो गोल थे लेकिन उनका आकार डंडे का हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों के अलावा ये सुदर्शन भी होंगे कलियुगा में हमारे साथ, क्योंकि इनकी सहायता से ही कोई व्यक्ति हमारा असली दर्शन कर सकता है। सु मींस वेरी गुड, बहुत अच्छा दर्शन। हाँ, तो सुदर्शन की कृपा से ही हम वास्तव में भगवान को ठीक रूप से देख पाते हैं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हो जाते हैं हम सब बद्ध जीवों पर अपनी कृपा का वर्षा करने के लिए। अपने जो भक्त हैं नारद और महाराज इंद्रद्युम्न से सेवा स्वीकार करने के लिए, तो हम सीखते हैं कि यदि हमारे अंदर सेवा की भावना है थोड़ी भी, तो भगवान तुरंत उस भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेशन आदर आदान प्रदान करते हैं। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान जगन्नाथ की महिमा को श्रवण कीजिए और उनके प्रति सेवा की जो भावना है उसको बढ़ाइए, हरि नाम का उच्चारण करते हुए।